ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते भक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबने सुबह श्रवण किया था नाम की महिमा, तो मैं थोड़ा सा नाम की जो महिमा है उसी का ही वर्णन करूंगा सरल भाषा में। तो श्रीमद् भागवतम में भगवत नाम की जो महिमा है शुरुआत में, मध्य में और अंत में श्रील शुकदेव गोस्वामी व्यास देव उन्होंने अत्यधिक मात्रा में वर्णित की है। तो वास्तव में यदि कोई व्यक्ति भगवत नाम की महिमा को सुनता है, भगवत नाम महिमा के बारे में चर्चा करता है, तो शास्त्र कहते हैं वो व्यक्ति सर्वाधिक सौभाग्यशाली है, मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन। क्योंकि धर्म कई प्रकार के हैं या कई प्रकार से लोग धर्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है केवल परम धर्म की यदि बात करें तो केवल एक ही परम धर्म है, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मि सुप्रसिद्धति। कि यदि पूर्ण रूपेण हम अपना हृदय मन और जीवन आनंद या समृद्धि से या सुख से भरा होना चाहते हैं तो उसके लिए व्यक्ति को एक ही परम धर्म का पालन करना चाहिए, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अधोक्षज किसका नाम है? कृष्ण का, विष्णु का, जो हमारे आंखों से परे हैं, अध अक्षज उसको अधोक्षज कहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति केवल भक्तिमय सेवा की भावना होनी चाहिए, और वो कैसी होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, दो चीजें, केवल भगवान की सेवा ही कर रहा हो उतना उचित नहीं है, लेकिन उस सेवा में ये दो गुण होने चाहिए। पहला गुण कौन सा है? अहेतु की, हे कृष्णा मेरा कोई हेतु नहीं है, केवल आपको सुख देने के अलावा मैं और कुछ अपने जीवन में नहीं चाहता। श्रीमती राधा रानी अपने एक वक्तव्य में कहती है कि हे कृष्णा यदि आप मुझे दुखी करके आप आनंदित होते हो तो मैं वो दुख सहन करने के लिए क्या हूं? तत्पर हूं। इसी में श्रीमती राधिका का सुख है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं तुम्हारा सेवा यह दुख है जर सहित परम सुख। भगवान की सेवा में भगवान को आनंद मिल रहा है और मुझे कितना ही कष्ट क्यों ना प्राप्त हो रहा है, लेकिन वो वास्तव में सुखी हैं, तो ये पहला गुण व्यक्ति के भगवत भक्ति में होना चाहिए, और वो क्या है? अहेतु के, बिना किसी हेतु के ऐसी कोई भी चीज हमने अपने जीवन में नहीं करते जिसमें कोई हेतु ना हो। हमारे एक भक्त थे, उनका नाम था हेतुदास। मैं जब नए नए ज्वाइन किया था 16 साल पहले, तो बड़े पुराने भक्त थे, उनका नाम हेतुदास था। तो हम उनको वैसे ही मजाक में कहा करते थे अहेतु की या फिर अहेतु प्रभु। तो हमारा अपने जीवन में किसी ना किसी हेतु से प्रेरित होकर हम कार्य करते हैं। बच्चों का पालन पोषण करते हैं तो उसके पीछे भी क्या रहता है? हेतु होता है। कोई भी व्यक्ति मुर्गी पालता है तो वो किस लिए? अंडा देना चाहिए। बच्चों को पढ़ना पढ़ाना लिखाना टेक केयर करना, ताकि मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरे आश्रय बनेंगे, सहारा बनेंगे बुढ़ापे का। तो मतलब कोई भी ऐसा दिन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको जिससे हम बिना हेतु के करने के लिए तैयार नहीं होते या प्रेरित नहीं होते। कुछ ना कुछ छुपा हुआ हेतु हमारा होता है हर कार्य में। लेकिन जब भगवत सेवा की बात आती है, भक्ति की बात आती है, और हम पूर्ण आनंद यदि चाहते हैं भगवत भक्ति से, तो एक ना एक दिन हमें एक कदम तो जरूर उठाना होगा। और वो कौन सा? भगवान, आपको आनंद देने के अलावा मैं और किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता। और दूसरी चीज क्या है? और यही वास्तव में ब्रजवासी है। कोई कहे कि ब्रजवासी कौन व्यक्ति है जिसके अंदर दो गुण हैं, एक है अहेतु की और दूसरा है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है बिना किसी खंडन के, बिना किसी रुकावट के, चाहे बारिश हो, गर्मी हो, ठंड हो, जो मर्जी हो, लेकिन भगवान की सेवा को मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी खंडन के। और उसको देखते हैं हम हरिदास ठाकुर के जीवन से। हरिदास ठाकुर भगवान नाम के प्रति इतने आदि आसक्त थे कि जब जल्लादों के द्वारा उनको 22 बाजारों में पीटा जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, कोड़ा मार्केट एक नहीं, कितने 22 बाजारों में ऐसे घसीट के ले जाया जा रहा था उनको, और लेकिन फिर भी वो एक अपना वक्तव्य, वो एक वचन बोलते हैं। वो कहते हैं कि खंड खंड है यदि कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन तबूत नामी छाड़ी वदने हरि नाम, फिर भी मैं अपने मुख से कृष्ण का ये नाम उच्चारण करना कदापि भी छोड़ूंगा नहीं। तो इसको कहते हैं अप्रतिहता। ये भगवत सेवा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के आखिरी श्लोक में कहते हैं अश्लिष्वा पादरताम पिनस्तुमाम। महाप्रभु कहते हैं, और चैतन्य महाप्रभु वास्तव में श्रीमती राधा रानी का जो भाव है उसको प्रदर्शित करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे नंद तनुज कृष्ण, मानो कि श्रीमती राधिका कृष्ण को संबोधित कर रही है, और वो कहती है कि हे कृष्ण, चाहे आप मुझे मेरा आलिंगन करें या फिर मुझे मेरी प्रताड़ना करें या मुझे लात मार के भगा दें, लेकिन फिर भी आप मेरे जीवन की क्या रहेंगे? प्राणनाथ रहेंगे मेरे, एक में मेरे प्राणनाथ आप ही रहेंगे। चाहे मेरा आलिंगन करें या मुझे प्रताड़ित करें, लेकिन फिर भी आपके अलावा मैं किसी और की आकांक्षा नहीं करूंगी, आप ही मेरे प्राणनाथ होंगे। तो इसी प्रकार से वो भक्त कहलाया जा सकता है जिसकी इस प्रकार की भावना भगवान के प्रति है। और तभी वास्तव में हम जो सोचते हैं ना शाश्वत सुख, जो हम बात करते प्रवचनों में, ग्रंथों में पढ़ते हैं, सच्चिद आनंद, शाश्वत आनंद बहुत चिल्लाते हैं, वो इतना सस्ता नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसका चुकाना पड़ेगा ऋण। और वो क्या है, ये दो चीजें हैं, अहेतु की अप्रतिहता, ययात्मा सुप्रसिद्धति, तभी आत्मा सबसे अधिक आनंदमय हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। चाहे जो मर्जी करें, हाँ, बाहरी रूप से हमें लग सकता है कृष्ण भावना बड़ा आनंददायी है, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फिस्टिंग, चार चीजें हैं भक्ति में, क्या है, चैंटिंग, डांसिंग, फास्टिंग, फिस्टिंग, ये चार चीजें। लेकिन इन चार चीजों को इन दो के साथ करना होगा। ये दो चीजें जितनी गंभीरता से हम करेंगे, ये जो एटीट्यूड हम बनाएंगे भगवान के भक्ति के प्रति, तभी वास्तव में जो परम सुख की हम चर्चा करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये तभी संभव है। इसलिए ये जो वक्तव्य मैं बोल रहा हूँ, ये भागवतम की शुरुआत है। सूत गोस्वामी प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में 88,000 ऋषियों को ये पहली बात बोल रहे हैं, सवे पुंसा परो धर्म, परम धर्म का पालन करो। और कलियुगा का परम धर्म क्या है, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग का जो धर्म है, वो है नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का क्या करना, अपने जीवा के द्वारा उच्चारण करना अधिक से अधिक, और भगवान के इन नामों को अधिक से अधिक कानों के द्वारा श्रवण करना। तो इसलिए ये जो विधि है लगती बहुत सस्ती और बहुत सरल, और इसे तो सोचते कि बचपन से ही मुझे पता है नाम उच्चारण करना, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ओपन सीक्रेट है। ये ओपन सीक्रेट है भगवत भक्ति का, भगवान नाम का उच्चारण करना। साल साल बीतते हैं या हम साल साल बिताते हैं, कई ग्रंथ पढ़ते हैं, कई प्रवचनों को सुनते हैं, कई चीजों का अध्ययन करते हैं, कई प्रकार की सेवाएं करते हैं, लेकिन ये जो नाम का जो सीक्रेट है, रहस्य है, वो कभी भी हमारे लिए क्या नहीं होता, खुलता नहीं है। और वास्तव में ये तभी खुलेगा जब भगवान नाम के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो वृद्धिंगत होगी अत्यधिक मात्रा में। जिस मात्रा में भगवान नाम के प्रति श्रद्धा का उदय होगा, उतनी ही मात्रा में ये भगवान नाम हमारे लिए क्या होगा, प्रकाशित होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि एक साधक का एक भी दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए कि जिस दिन वो भगवान नाम के बारे में ना पढ़ता हो, भगवान नाम के बारे में ना सुनता हो, कुछ ना कुछ भगवान नाम से संबंधित पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ भगवान नाम से संबंधित सुनना चाहिए या चर्चा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, भगवान जो नाम है भगवान का, उसके प्रति हमारे जो श्रद्धा का, जो श्रद्धा की भावना है, उसका विकास होगा। इसीलिए कलयुग में बाकी और धर्म को स्थान नहीं है, कलयुग का ये प्रमुख सबसे मुख्य कार्य है। इसलिए श्रील प्रभुपाद भी इस पर सर्वाधिक जोर देते थे अपने आंदोलन में, क्योंकि आप यदि गहराई से इस आंदोलन को समझना चाहते हो तो समझना होगा कि ये जो आंदोलन है ये केवल एक ही चीज से शुरू हुआ है। और वो किससे शुरू हुआ है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो आंदोलन श्रील प्रभुपाद ने नाम से शुरू किया है, भगवान नाम से, हाँ, ये इतना पावरफुल है, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे कि ये जो कलयुग का धर्म है ये हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। जिस व्यक्ति के पास मनुष्य का जीवन है उस व्यक्ति के लिए ये कलयुग का धर्म लागू होता है, और वो धर्म है भगवान नाम का कीर्तन करना, भगवान नाम का उच्चारण करना। इसलिए ये बहुत बड़ी जर्नी है, हाँ, नाम से धाम तक। नाम से कहां जाना है हमें? नाम टू धाम। तो नाम से लेकर धाम, तो नाम लेंगे तभी हम कहां पहुंचेंगे? धाम पहुंचेंगे। यदि नाम ही नहीं लेंगे या नाम के प्रति हमारा अनुराग नहीं है तो धाम जाना हमारे लिए क्या है? स्वप्नवत है, असंभव है। इसी कारण से परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान थे। इसलिए जो भक्त हैं उनके जब चरित्र का वर्णन होता है शास्त्रों में तो उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जब श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज का वर्णन आता है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कथा का बर्थ प्लेस कोई है तो वो कौन है? परीक्षित महाराज का चरित्र। परीक्षित महाराज के चरित्र से ही कृष्ण कथा का क्या हुआ है? भागवतम में जन्म हुआ है। हाँ, तो ऐसे महाराज परीक्षित की ये विशेष देन है। क्या देन है परीक्षित महाराज की? ये नाम संकीर्तन। भागवतम में प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि कलयुग में सारे जो लोग हैं वो काल रूपी सर्प के द्वारा निगले जा रहे हैं और हर एक व्यक्ति अपनी रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, इस राक्षस से बचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कलयुग के लोगों के पास उतनी बुद्धि नहीं है। मंद बुद्धि मंद भाग्य, तो मंद बुद्धि के हैं, मंद भाग्य के लोग हैं, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं कलयुग में? इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि इस कलयुग के लोगों के पास कोई ऐसी विशेष योग्यता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग का दूसरा नाम क्या है? कलह प्रिय युग। कौन सा युग? कलह प्रिय। कुछ लोग होते हैं ना, उनको नींद नहीं आती जब तक दिन में कुछ ना कुछ कलह नहीं किया हो। कुछ माताएं होती हैं जब तक वर्बल फाइट ना हो उनको शांति नहीं मिलती, चाहे फोन में या घर में या मेड के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए रोमांच लाने वाला। तो इसलिए कहते हैं कलह प्रिय युग है। आपस में क्या है? निरंतर कलह होते हैं। कोई नहीं मिला तो बर्तन घिसते समय इस बर्तन को उस बर्तन में डाल के आवाजें होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कलयुग में कलह ये निरंतर है, चाहे आप घर में हो, बाहर हो, रास्ते में जा रहे हो। जैसे आप कहते ना ये तो नरसिम्ह, पर तो नरसिम्ह, बहिर नरसिम्ह, आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह कौन है? नरसिम्ह है। तो कलयुग में चारों ओर एक ही चीज है और वो क्या है? कलह। जहां मर्जी आपकी गाड़ी किसी से आसपास से गुजरी हो तो तुरंत दूसरा व्यक्ति चिल्लाएगा किसी कारण से। तो हमेशा कुछ ना कुछ कलह, ये वैसी स्थिति है। हम जैसे मैं भूल गया उसको हिंदी में क्या कहते हैं, चलो छोड़ो। तो कलयुग में हर व्यक्ति या ये जो युग है ये कलह प्रिय युग है। तो ऐसे युग के लिए बहुत पावरफुल दवाई होनी चाहिए। इसलिए भागवतम की शुरुआत में ही प्रथम स्कंद में ये वर्णन आया है कि इस कलह प्रिय युग से बचने के लिए एक ही उपाय है। क्योंकि कलयुग की शुरुआत होती है जिस दिन भगवान कृष्ण इस पृथ्वी का क्या करते हैं? त्याग करते हैं। भागवत में कहा गया है यस्मिन दिने हरिर यातो दिवं संतेज्य मेदिनीं तस्मिन्ने वावर्तीर्णोयं कालकायो बलिं कलि। अब वहां कहा गया है कि जिस दिन भगवान कृष्ण इस संसार से अप्रकट हो गए जिस क्षण, उसी क्षण कलि की क्या हो गई? शुरुआत हो गई कलयुग की। और वास्तव में इसका अनुभव किसको होता है? केवल भक्तों को होता है। हाँ, तो जब ये केवल भक्त ही अनुभव कर सकता है कि कलयुग कितना पावरफुल है और कितना तेजी से बढ़ रहा है, जो भक्त नहीं है उनको उससे पता नहीं चलता। हाँ, इग्नोरेंस इज ब्लिस कहते ना, अज्ञानता ही क्या है? आनंद है। तो उसी प्रकार से भक्त बने बिना इस कलयुग की जो कठिनाई है उसको नहीं जाना जा सकता। और वास्तव में इसको अनुभव किया था किसने? पांडवों ने। किसने? सर्वप्रथम कली के जो शक्ति है उसको किसने अनुभव किया था? पांडवों ने। क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ पांडवों का इतना घनिष्ठ संबंध था कि भगवान कृष्ण द्वारका में कम रहते थे लेकिन ज्यादा कहा इधर आते थे, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ आदि। कुछ ना कुछ बहाना बनाकर कृष्ण सदैव पांडवों के इर्द गिर्द रहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने वचन दिया है, नमे भक्त्या प्रणश्यति। इतने सारे संकट, इतने सारे कष्ट विपदाएं आए लेकिन पांडव हर समय क्या होते थे? बच जाते थे। क्यों कृष्ण उनके गुलाम बने थे? क्यों कृष्ण उनके सर्वेंट बने थे? क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, वास्तव में जो व्यक्ति अनन्य भावना से मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा में लगता है, मैं सारे उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई धनाढ्य व्यक्ति कहता है ना, अरे तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो वैसे ही कृष्णा वचन देते हैं लेकिन वास्तव में उसके लिए फेथ, श्रद्धा चाहिए। भगवान ने तो बहुत चीजें बोली हैं गीता के, भगवान के एक वचन पर विश्वास करेंगे और स्थिर हो जाएंगे हम, हाँ तो हमारा उद्धार निश्चित है, कृष्ण के हम प्रिय बन सकते हैं। लेकिन गीता के 700 श्लोक याद करने के बाद भी हमारा भगवान और उनके वचनों पर फेर नहीं है, फिर भी हम भगवान के अलावा भौतिक चीजों का आश्रय लिए हैं। हाँ, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण हमेशा पांडवों के इर्द गिर्द रहते थे और पांडवों का जीवन ही था कृष्ण के लिए। क्योंकि कृष्ण जब तक इस संसार में थे तब तक पांडव आनंदित थे। बल्कि युधिष्ठिर महाराज ने तो इतना मांगा था कि मुझे बहुत सुंदर पत्नी चाहिए। हाँ, जब वो मांग रहे थे भगवान से, मुझे सुंदर ब्यूटीफुल वाइफ और बहुत सारा धन चाहिए। किसने पूछा, अरे युधिष्ठिर तुम्हें वो श्लोक याद नहीं है, अनन्य चिंतयन्तो, या फिर अभी अभी जो हमने बोला था, अप्रतिहता अहेतु के। तो युधिष्ठिर कहते हैं, ये दोनों चीजें मेरे लिए नहीं, ये दोनों चीजें किसके लिए चाहिए? कृष्ण के लिए, कृष्ण का गुणगान करने के लिए। बल्कि उन्होंने राजस्व यज्ञ किया था वो अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं कि वो कितने महापराक्रमी हैं और सारे जगत के राजा हैं, बल्कि किसकी महिमा को जग भर प्रसारित करने के लिए? कृष्ण की। तो इस प्रकार से जो पांडव हैं, हमेशा बहुत दिन हो गए महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण वापस आए नहीं, या कोई न्यूज नहीं थी। अभी तो एक सेकंड में व्हाट्सएप करो तो पता चलता है कौन कहाँ है, खा रहा है, सो रहा है, चल रहा है, हाँ तो तुरंत हमें पता चलता है। तो भगवान बहुत दिन हो गए महाभारत के युद्ध के ऊपर द्वारका गए, तो युधिष्ठिर को लगा कि अभी खाली खाली लग रहा है, अर्जुन तुम जाओ जरा न्यूज लेके आओ। अब सोचो यहाँ से जाना द्वारका, हाँ गुजरात, दिल्ली से गुजरात जाना, अर्जुन गए न्यूज लाने के लिए और बहुत महीने बीते लेकिन अर्जुन वापस नहीं आ रहे थे। कितनी चिंता युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन की नहीं, किसकी चिंता? कृष्ण की। क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके शरीर के जो बाएं अंग हैं, हाँ वो सारे अशुभ लक्षण प्रकट कर रहे हैं और बहुत सारा वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि उन्होंने देखा कि जो सियार है वो चिल्ला रहे हैं, गधे भी आक्रोश कर रहे हैं, मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो रो रही हैं, आप कौवे भी चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे और लोग धन के लिए, सम्मान आदि भौतिक चीजों के लिए आपस में लड़ाई झगड़े आदि कर रहे हैं। तो ये सब उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज ने और उनको महसूस हुआ कि जरूर हाँ कृष्ण इस जगत से क्या हो गए हैं, आप प्रकट हो गए हैं, ये लक्षण है। हाँ तो वैसे जैसे उन्होंने अनुभव किया और सोचने लगे कि अर्जुन क्यों नहीं आ रहा है, इतना लंबा समय बीता, तो फिर ऐसा सोच ही रहे थे, भीम के साथ बैठे हुए थे, तो कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में अर्जुन का आगमन होता है। और अर्जुन आता है, अबे अर्जुन का मुंह नीचे हो गया था, उसके मुंह पर कोई सुख का निशान नहीं था, अर्जुन बहुत दुखी लग रहा था और नीचे गर्दन किए हुए है युधिष्ठिर महाराज के सामने खड़ा रहा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अरे अर्जुन बताओ क्या हुआ, बहुत सारे वक्तव्य करते हैं। तो लेकिन अर्जुन फिर रो पड़ते हैं, अर्जुन बोलते हैं एक चीज, अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरि नाम बंधु रूपिना, हे न मेह परतम तेजो देव विस्मापन महात। तो अर्जुन कहते हैं, वंचितो हम महाराज हरि नाम बंधु रूपिना, कि हे मेरे महाराज युधिष्ठिर, मैं वंचित हो गया हूं। किससे वंचित हो गया हूं? हरि नाम बंधु रूपिना, ये हरि कृष्ण कैसे है, वो मेरे बंधु के समान है, घनिष्ठ मित्र है, जिनको मैं खो चुका हूं। उन्होंने कहा, मेरे पास जितना तेज पराक्रम ऐसा था कि देवता गण भी चकित हो जाते थे मेरे पराक्रम को देखकर, लेकिन अभी मैं क्या हो गया, पराक्रम से रहित हो गया हूं, तेज से रहित हो गया हूं। तो कहने लगे, यश क्षण वियोगेन लोको ही प्रिय दर्शना, कहते हैं जिनके कारण मुझे इस संसार के लोग या लोग अप्रिय लगने लगे हैं, जब तक कृष्ण मेरे जीवन में है तब तक मेरे लिए सब कुछ क्या है, ठीक है, सब मेरे लिए प्रिय है। अभी कृष्ण ही नहीं रहे, अर्जुन ने कहा कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा नहीं रहता तो वो शरीर अप्रिय हो जाता है, मृत हो जाता है। हे युधिष्ठिर महाराज, उसी प्रकार से मैंने कृष्ण को खो दिया है, जिसके कारण अभी मुझे जीने की, जीवित रहने की आकांक्षा नहीं है। तो ऐसा प्रेम, ऐसा जो लगाव है इन पांडवों का कृष्ण के प्रति था। और वास्तव में तब युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, उन्होंने बिल्कुल ऐसे मौन धारण किया। उन्होंने सोचा, अभी संसार में करने के लिए क्या रह गया, किससे बात करूं, किससे चर्चा करूं, कोई व्यक्ति या वस्तु स्थान प्रिय नहीं है, क्योंकि जहां हमारे प्रिय भगवान ही चले गए, हाँ तो ये सारे भौतिक चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने अपने बाल खोल दिए और अपने वस्त्र त्याग दिए, मुकुट उठाकर साइड में रख दिया, हाथ में लकड़ ले लिया और किसी से बात न करते हुए उत्तर दिशा की ओर क्या करने लगे, प्रयाण करने लगे। अब वास्तव में यह है भक्त का जीवन, कि भगवान के बिना क्या है, युगायतम निमेषेन चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। अब वास्तव में प्रीति का लक्षण है, प्रेम का लक्षण क्या है, प्रेमी के बिना ये संसार के जो सुख उपभोग है वो शून्य के समान महसूस होते हैं, उसमें कुछ आनंद अनुभव नहीं होता। ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे। महाप्रभु कहते हैं कि हे गोविंद कृष्ण, आपके विरह के बिना ये जो जगत है मुझे शून्य ही दिख पड़ रहा है, एक एक क्षण मुझे किसके समान महसूस हो रहा है, युग के समान प्रतीत हो रहा है। हाँ, जैसे आप सोचो बहुत भूख लगी है और आपको लाइन में बिठा दिया है, पत्तल भी बांट दिए, ग्लास भी दे दिया, और लेकिन फिर कहा गया कि अभी प्रसादम आने में आधा घंटा बाकी है, तो एक एक मिनट कैसे लगेगा, युगायतम, अरे एक मिनट कितनी बार मोबाइल देखो कि घड़ी देखो या टाइम जा ही नहीं रहा है, और पेट में कौवे या चूहे कूद रहे हैं, कौवे चिल्लाते हैं चूहे कूदते हैं, तो ऐसी स्थिति हमें इस चीजों के लिए होती है। और वास्तव में उन्नति का लक्षण क्या है, भगवान के प्रति विरह का अनुभव करना, भगवान के हर चीज से, कृष्ण कथा से, नाम संकीर्तन से, भागवत श्रवण से, ग्रंथों का अध्ययन सेवा से, ये नहीं हो तो ऐसे लगना चाहिए अरे बहुत दिन हो गए ये सब नहीं हुआ। हाँ, व्याकुलता आ जानी चाहिए, लवल्य आ जाना चाहिए। जब स्वाभाविक रूप से व्याकुलता लवल्य आदि हमारे हृदय में आध्यात्मिक कार्यों के लिए आ रहा है, उसका मतलब है कि मेरा मन अभी भौतिक लगाव से रहित होकर भगवत कार्य में क्या हो रहा है, लग रहा है। तो ऐसे जब भगवान इस संसार से अप्रकट हो जाते हैं तो पांडवों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो परीक्षित महाराज मथुरा का जो राजा है वो वज्रनाभ को बनाते हैं, और यहाँ का राजा किसे बनाते हैं, परीक्षित महाराज उनके जो प्रपौत्र है, परीक्षित महाराज को राजा बनाकर सारे पांडव निकल पड़े। द्रौपदी भी नहीं, कुंती भी उनके साथ चली गई, क्योंकि इन सबके प्राण कौन थे, कृष्ण थे। कब वो दिन आएगा जब हमें लगेगा कि कृष्ण ही मेरे क्या है, प्राण है, लाइफ एंड सोल कृष्णा है। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने जब राज्य संभाला तो परीक्षित महाराज कृष्ण के महान भक्त हैं। भागवत में वर्णन आता है कि बचपन से राजा परीक्षित कृष्ण बलराम के जो विग्रह आदि हैं उनसे खेला करते थे, उनकी सेवा करते थे, और भगवान से बहुत अधिक उनको लगाव था। लगाव क्या, सबसे पहले उन्होंने भगवान को कहां देखा था, कहां देखा था, माँ के गर्भ में। हम सब याद है, आप सब माँ के गर्भ में थे, हमें याद नहीं है, भूल गए हम कि हम भी इतने छोटे से थे और अंदर पूरा 9 महीने के लिए वहां विश्राम कर रहे थे, और वहां अंदर जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि भगवान आप मुझे बाहर निकालो, और बाहर आकर मैं जोर जोर से हरि नाम लूंगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन बाहर आकर हमसे वो होता नहीं है। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि जीव सबसे पहले भगवान का स्मरण कब करता है, जब वो माता के गर्भ में होता है, वो हमारा प्रथम वो है तो समय है जिस समय हम भगवान का स्मरण करते हैं। परीक्षित महाराज का सौभाग्य देखो, माता उत्तरा के गर्भ में थे, और उस समय ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा था जिससे रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण घुस गए गर्भ के अंदर और अपनी गदा निकाली, गदाधर है ना कृष्ण, गदा निकाली और उनके बालक के चारों ओर घूमने लगे, ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा करने लगे। तो ये छोटा सा अंदर माँ के गर्भ में परीक्षित, इन्होंने उसी समय देखा था मुकुट चतुर्भुज शंख चक्र गदा लेके इन्हें तैयार है, और फिर बाहर आए तो अभी किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, उनकी जो आंखें हैं एक ही चीज को देख रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं ना खिलौने से इतना प्रेम, जहां जाए उनके आंखें खिल, दूसरे के घर में भी जाएंगे वहां कहां से खिलौने ढूंढ के ले आएंगे, शॉप में जाएंगे जहां मर्जी, हाँ उनके आंखों में किसी चीज का नशा हो गया वही व्यक्ति ढूंढता है, हाँ उसी चीज को ढूंढता है। तो ऐसे परीक्षित बालक का जब जन्म हुआ तो ये बालक की विशेषता थी कि ये ढूंढ रहा था, उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिस व्यक्ति ने उनकी माता के गर्भ में रक्षा की थी, और जिस व्यक्ति ने उनको ब्रह्मास्त्र से माता के गर्भ में क्या किया था, बचाया था। इसलिए हरे के पास जाते थे और देखते थे ये वो तो नहीं है, जैसे कई बार होता है ना इस्कॉन में सारे तिलक माला एक जैसे दिखते हैं कई बार, हाँ लोग बहुत सारे बड़े गैदरिंग में, तो बड़ा मुश्किल होता है पहचानना, नजदीक जाके देखना पड़ता है वो प्रभु तो नहीं है। हाँ, तो वैसे ही इतने लोगों को देखा परीक्षित ने और फिर कोई मिला नहीं वो व्यक्ति, और हम भी अपने जीवन में एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, जिससे हम इतना प्रेम करें कि कोई हद नहीं, और हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो हमसे सबसे अधिक क्या करे, प्रेम करें। परीक्षित महाराज भी ढूंढ रहे थे और फाइनली परीक्षित महाराज ने उस व्यक्ति को पकड़ ही लिया। कहां पकड़ लिया, राजसूय यज्ञ में। जब ये छोटे से बालक के थे परीक्षित, राजसूय यज्ञ जब हो रहा था तो कृष्ण तो वासन में बैठे हुए थे, भगवान इतने अधिक विनम्र हैं। कृष्ण एक्चुअली इसलिए कृष्ण के गुणों के बारे में सोचना चाहिए, एक क्वालिटी को पकड़ो और उसके पीछे हाथ धो के लगो। हाँ, जैसे भगवान राजसूय यज्ञ में क्या सेवा करते थे कृष्ण, सारे जो आ रहे हैं ब्राह्मण आदि थे, हाँ उनके क्या करना, पत्तल और शू जो जूता है हाँ उनको या चरण आदि धोना ऐसी सेवा करते थे। तो वैसे ही भगवान जब बैठे थे और ये परीक्षित महाराज को लगा राजस्व यज्ञ में तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि सब महात्मा गणाए, अभी ये अच्छा मौका है उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। तो वो ढूंढ रहे थे हाँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कौन है। तो व्यासदेव वहां थे, व्यासदेव ने कहा कृष्णा कब तक छुपा के रहेंगे, अभी तो इस बालक को दिखा दो अपना मूल जो चतुर्भुज रूप है जो आपने इसकी रक्षा की थी उत्तरा के घर में। तो व्यासदेव के आदेश पर भगवान कृष्ण उनको दिखाते हैं और परीक्षित महाराज का जो जीवन है कृष्ण की सेवा के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित था। जब ये राजा बने तो यही भावना थी कृष्ण की सेवा में हाँ ये राज्य करूंगा। तो ऐसे एक दिन बाहर निकले अपना राजपाट आदि देखने के लिए, तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति को देखा, किसको देखा, एक ऐसा व्यक्ति शूद्र व्यक्ति लेकिन वस्त्र किसके पहने हुए थे, राजा के, और वो क्या कार्य कर रहा है, एक गाय और एक बैल के पाद या पैरों पर प्रहार कर रहा है और उस बैल के तीन पैर तोड़ दिए, एक पैर पे वो बैल खड़ा था हाँ, इस पर एक पैर पर वो खड़ा था बैल और गाय के आंखों से अश्रुपात हो रहा था, रो रही थी। हाँ तो उस समय ये राजा परीक्षित ने देखा, रही ये क्या मेरे राज्य में। हाँ तो परीक्षित महाराज ने अपनी पहनी तलवार निकाली और तत्पर हो गए उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए। तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भी आपका एक प्रजा हूं। हाँ मैं कौन हूं, कली हूं। कौन हो, कली। हाँ कली के एजेंट भी होते हैं भक्ति में आने के बाद भी, वो एजेंट भक्तों का वेश धारण करते हैं हाँ, जिससे हमें क्या करते हैं, भक्ति से दूर ले जाते हैं। यहां शूद्र था कली जिसने राजा का वेश धारण किया था, लेकिन कार्य शूद्र के कर रहा था, मनोवृत्ति शूद्र की थी। तो ऐसे जब अपने तलवार से उसको दंडित करने वाले थे, मारने वाले थे परीक्षित महाराज हाँ, तो उन्होंने कहा मैं भी आपकी प्रजा हूं, आप मुझे एक स्थान दे दीजिए। कहा ना कहा स्थानानि कलयो ददो, कि मुझे आप एक प्लेस दे दो जहां मैं निवास करूंगा। बल्कि कोई कह सकता है कि अरे मार देता तो अच्छा होता हाँ, लेकिन नहीं, क्योंकि उसमें एक सर्वोच्च गुण था उस कली का, कली में हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति पर्सन है, जैसे गंगा नदी है वो भी क्या एक व्यक्ति है हाँ, जो गोवर्धन या जो भी पहाड़ है वो भी एक पर्सन है, हिमालय भी एक पर्सनिफाइड पर्सन है। तो उसी प्रकार से ये कली युगा भी एक ऐसा व्यक्ति है, पर्सन है जो उसको लीड करता है एक प्रकार से। तो ऐसे जो कली है इन्होंने देखा परीक्षित महाराज ने, इसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं हाँ, क्योंकि भागवतम में आप पढ़ेंगे अंतिम में भागवत का जो वर्णन करते हैं, सार प्रस्तुत करते हैं शुकदेव गोस्वामी। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कले दोषो निधि राजन अस्ति एक महत गुनाह हाँ, ये बहुत बड़ा गुण होता है भक्त का कि किसी में बहुत दुर्गुण है हाँ, लेकिन उसमें क्या ढूंढना, गुण ढूंढना हाँ। जैसे एक बार दो मंदिर के भक्तों का आपस में फाइट हो गया हाँ, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास गए हाँ, तो गए और एक भक्त ने कहा इसमें ये दोष है, ये है, वो है, इतनी सारी कंप्लेंट्स करने लगा। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा ठीक है, बहुत सारे दुर्गुण बोल दिए, अभी मुझे बताओ एक गुण बताओ इसमें क्या अच्छा है। भक्ति सिद्धांत महाराज को वो भक्त कहता है जिसने बहुत दोष बोल दिए थे, इसको कहते हैं दोष कीर्तन। कौन सा कीर्तन, दो चीजें, गुण कीर्तन, रूप गोस्वामी कहते हैं चार प्रकार के कीर्तन होते हैं, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। तो हम तो दोष कीर्तन अच्छा लगता है हमें, किसी के दोष आदि की चर्चा करना, सुनना, गाना। तो वहां भक्ति सिद्धांत महाराज ने उस भक्त को कहा कि आप बताओ इतने सारे दोष बोल दिए हैं, कोई एक गुण है क्या इस भक्त में। उन्होंने कहा एक गुण कि ये बिल्कुल साफ सुथरे वस्त्र पहनता है हमेशा हाँ नीट क्लीन रहता है, साफ सुथरा वस्त्र पहनता है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं हाँ, और तो ऐसे देखा गया कि बहुत सारे गुण उसे मिले। तो वैसे ही वैसे देखा जाए कलयुग तो दोषों का निधि है, सागर है, कलो दोषो निधि राजन। लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं अस्ति एकत महत गुणः, एक गुण इस कलि में इतना है जिसको बोला गया है महत गुण, महत में सबसे बड़ा महत पुरुष महाप्रसाद। हाँ तो वैसे ही ये महत गुण है, बहुत बड़ा गुण है जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती। और वो गुण क्या है तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कीर्तनादेव कृष्णश मुक्त संगह परम रजे। इस कलयुग में एक ही क्वालिटी है, एक ही गुण है और जिसके द्वारा व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और वो है कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण का नाम कीर्तन। ये जब परीक्षित महाराज ने सोचा हाँ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं इसको जगा दे देता हूं। हाँ तो उन्होंने परीक्षित महाराज ने उनको चार स्थान प्रदान किए, और वो कौन से स्थान है जिसको आप जिससे हम परिचित हैं? अभ्यर्थिस्तदातस्मै स्थानानि कलये ददो द्युतं पानं श्रियासुना यत्र धर्म चतुर्विधः। तो फिर कली के लिए उन्होंने चार स्थान दिए, द्युतं जहां जुवा आदि खेला जाता है, पानम जहां नशा होता है, श्रेया जिस जहां अनैतिक संबंध स्थापित होते हैं, सुनहा मिल जहां मांस आदि खाते हैं। हाँ तो ये जो स्थान है चार, ये परीक्षित महाराज ने किसको दे दिए? कली को, यहां निवास करो। क्योंकि उस समय लोग इतने उन्नत थे कि ये स्थान वैसे देखा जाए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, या होते होंगे तो बहुत रेयरली। हाँ तो ऐसे स्थानों में उनको दे दिया। और भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति अपनी भलाई चाहता है तो उस व्यक्ति को इन चार स्थानों को क्या नहीं करना चाहिए, स्वीकारना नहीं चाहिए, या चार स्थानों की सेवा नहीं करना चाहिए, इन चारों का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ तो इसलिए हम हाँ प्रभुपाद ने हमें ये चार नियम दिए हैं, क्योंकि इसमें प्योरली किसका निवास है? कली का है। हाँ जिससे हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है और हमारा जो भगवत स्मरण है हाँ वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसी कारण से कली को वहां वास दिया, और इसलिए कहा कि उन्नत व्यक्तियों को इन चार चीजों से दूर रहना चाहिए, तभी व्यक्ति भगवत भक्ति के पद पर क्या हो सकता है, अग्रसर हो सकता है। इसे कहते हैं शुद्ध पाप कर्म, आजकल होते ना देशी शुद्ध घी, वैसे ही है प्योर डिवोशनल सर्विस और प्योर सिंफुल एक्टिविटीज क्या है, तो ये चार कार्य है प्रभुपाद कहते हैं। तो इस प्रकार से हाँ कलियुग ये है बहुत बुरा है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। इसी कारण से हमारी परंपरा के जितने आचार्य हैं वो इस कलियुग को स्पेशल कलियुग कहते हैं, जिसको इस गौड़ीय संप्रदाय के वैष्णव ने नाम दिया है धन्य कली। कौन सा कली? धन्य कली। कहते कि धन्य है ये कलियुग, हाँ क्योंकि यह जिस युग में स्वयं भगवान नाम ही एकमात्र माध्यम है, और स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए ये जगत में अवतरित हुए थे। और बल्कि वास्तव में व्यास देव ने भी इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि एक बार सारे पृथ्वी के सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए और आपस में वो चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि कौन से ऐसे धर्म का पालन करने से बहुत लाभ मिल सकता है सांसारिक लोगों को। तो वो चर्चा कर रहे थे कस्मिन काले अल्प को धर्मो ददाति सु महत फलः, कि थोड़ा सा धर्म पालन करने से, थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्य करने से सांसारिक जो अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है, तो वो कौन सा कार्य है? तो सारे ऋषि मुनि पृथ्वी के एकत्रित हो गए और लंबा चर्चा कर रहे थे, उनका कन्वर्सेशन हो रहा था और वो कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने सोचा एक ही महामुनि है, और वो महामुनि कौन है? शिल कृष्ण द्वापायन व्यास, व्यास देव के पास गए और व्यास देव के पास एक चलते हुए जा रहे थे हजारों सारे लोग, आप बड़े बड़े दिग्गज ऋषि मणि ज्ञानी तपस्वी, और वहां व्यास देव तो एक नदी में स्नान की स्नान करने के लिए जल के अंदर थे और जोर जोर से पानी के अंदर से चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? कि कलियुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। अभी ये तो भ्रमित हो गए बेचारे सारे, जहां कलियुग की इतनी निंदा की गई है, शूद्रों की इतनी अवहेलना की गई है, उन्हीं का गुणगान ये व्यासदेव कर रहे हैं, उनको लगा कि इनको क्या हो गया है। व्यासदेव भ्रमित तो नहीं हो गए? ये सब लोग व्यासदेव के पास आते हैं और अपना जो प्रश्न है वो पूछते हैं कि कस्मिन काले अल्प को धर्मो ददाति सुमहत फला, कि क्या करने से इस कलियुगा में थोड़ा कार्य करने से अत्यधिक महत आध्यात्मिक प्राप्ति हो सकती है, लाभ हो सकता है, क्या है जो हमें करना चाहिए या सांसारिक व्यक्ति को करना चाहिए। तो व्यास देव ने कहा एक ही चीज है, यत्रते दशबीर वर्षे, वो कहने लगे कि जो कार्य या जो लाभ सत्ययुगा में 10 साल आपको करना पड़ता है, त्रेता युगा में आप करते हो 1 साल के लिए और द्वापर में 1 महीने, और इतना जो समय है अलग अलग युगों का, वही कार्य केवल कलियुगा में 1 दिन और 1 रात्र मतलब 24 आवर्स यदि आप करते हो, हाँ तो आपको पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है जो बाकी युगों से अत्यधिक श्रेष्ठ है। और क्या करने से? व्यास देव ने कहा भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, हाँ नाम है ते हय सर्व जगत निस्तार। तो कलियुगा में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, हाँ तो ये इसके लिए फेथ चाहिए और श्रद्धा का विकास होता है साधु संघ से और शास्त्र अध्ययन से। ये दो चीजें हम करते हैं तो हमारा श्रद्धा का लेवल हाई होता है, इसलिए निरंतर ये दो चीजों में लगना चाहिए। अत्यधिक अत्यधिक हमें प्रयास करना चाहिए साधु संघ, और दूसरा है जितना भी हमें समय मिले तुरंत ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र शस्त्र के समान है जो हमारे भौतिक आसक्तियों को काट देते हैं, छेदन करते हैं, उन्मूलित कर देते हैं। इसलिए ये दो कार्य जब हम करते हैं जिसके द्वारा श्रद्धा का उदय होता है या श्रद्धा बड़ी प्रगाढ़ हो जाती है, और तब हम अनुभव कर पाते हैं कि भगवान वास्तव में कलियुगा में उनके नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। क्योंकि श्रद्धा के साथ जब आप नाम लोगे तब वो प्रभावशाली होगा, अत्यधिक प्रभावशाली होगा। उसका लाभ तो है कि शयने कि भोजने कि वा जागरने, हाँ क्या सोते समय जागते समय चलते समय नाम लेना लाभ तो है, लेकिन यदि हम रियल लाभ चाहते हैं तो पूर्ण कन्विक्शन के साथ हमें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। क्योंकि श्रद्धा वाण जन है भक्ति अधिकारी, भक्ति के लिए एक ही अधिकार चाहिए। हाँ क्या अधिकार चाहिए भक्ति के लिए? श्रद्धा। जितनी मात्रा में व्यक्ति के पास श्रद्धा है उतनी मात्रा में व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में क्या करता है? तीव्रता से उन्नति करता है। तो इसलिए ये जानना आवश्यक है कि कलियुगा में भगवान नाम के अलावा हमारा कोई और सहारा नहीं है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे। यदि कोई कहे कि ये 14 लोक हैं नीचे के साथ और ऊपर के साथ, इसमें लेने योग्य क्या वस्तु है जो मैं अपने साथ लेके घूम सकता हूँ जा सकता हूँ, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते एक ही रत्न है, और वो रत्न क्या है? कृष्ण नाम। हाँ कि कृष्ण नाम हमें कोई भी चीज बड़ी सस्ते से मिल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ, लेकिन आप उसको कुछ पे करते हो तो आपको उसकी वैल्यू पता चलती, सोचते हो कि नहीं मैंने बहुत धन स्पेंड किया है जिसके कारण मुझे वस्तु मिले, तो उसको बड़ा ध्यान से हम रखते हैं। हाँ, तो लेकिन ये भगवान नाम चैतन्य महाप्रभु लेके आते हैं, गोलो केरव प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन। भगवान अपने धाम से ये भगवत नाम लेके आते हैं और हमें प्रदान करते हैं। बल्कि कई बार हम इतने आलसी हो जाते हैं और भगवत नाम हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र को इतना चीप ले लेते हैं कि सोचते नहीं कुछ और होगा, और इससे कुछ बढ़कर होगा और कुछ मंत्र होगा गुह्य, जिसको मतलब भक्त बनने के बाद भी हरे कृष्ण जप करने के बाद भी कुछ ना कुछ हृदय में मन में चेतना में एक बात बनी रहती है कि नहीं और कुछ दूसरा कुछ होगा ना जो बेटर होगा। लेकिन नहीं, वास्तव में देवी देवता गण भी ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए लालायित होते हैं। आप जानते हैं शिव जी किस नाम का जप करते हैं? राम, हाँ, महादेव पंच मुखे राम राम हरे हरे, हाँ, चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले, हाँ, ब्रह्मा कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते हैं। तो ऐसे जब ये शिवजी एक बार राम नाम का जप कर रहे थे तो उस समय उनकी जो पत्नी है पार्वती देवी, पद्म पुराण में वर्णन आता है कि वो गए और उन्होंने किसी से विष्णु सहस्त्र नाम प्राप्त किया, उसका उच्चारण करती थी। पार्वती देवी का जप का वर्णन आता है, इतनी निष्ठावान लेडी है पार्वती देवी कि जब तक उनका विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण नहीं करेंगे तब तक कुछ भक्षण करती नहीं है। तो ऐसे जब पार्वती देवी हरि नाम उच्चारण कर रही थी विष्णु सहस्त्र नाम, और वो आगे और देखा मेरे पति भी जप कर रहे हैं, हाँ, और वो क्या जप कर रहे हैं? राम नाम का जप कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको कहा, हाँ, कि ये विष्णु सहस्त्र नाम है उससे भी श्रेष्ठ एक नाम है, और वो कौन सा है? राम नाम। शास्त्र कहते हैं जिसके बारे में वर्णन आता है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम भिस्तुल्य राम नाम वरानने। वरानने means, आनने means गर्दन, कि हे सुंदर मुख वाली पार्वती, शिव जी अपने पत्नी को कहते हैं कि ये जो भगवान राम का नाम है वो इतना शक्तिशाली है कि वो उच्चारण करने मात्र से, एक बार उच्चारण करने मात्र से विष्णु के हजारों नामों के समान है। इस प्रकार से वो बता रहे थे और तब अपने पत्नी को वो दीक्षित करते हैं राम नाम से। लेकिन आगे चलकर वो ये अनुभव करते हैं कि राम नाम से भी श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण नाम, जिसकी आकांक्षा थी पार्वती देवी को। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए तो पार्वती देवी स्वयं इस भगवत नाम को स्वीकार करती हैं, हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र को, और उसका निरंतर उच्चारण करती हैं। तो ऐसे शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे श्लोकाज और दृष्टांत हैं जिसके द्वारा हम समझते हैं कि ये जो भगवत नाम है वो इतना मूल्यवान है जिसको लेने के लिए देवतागण भी हमेशा तत्पर रहते या लालायित रहते हैं। हाँ, तो ये जो हरि नाम है वास्तव में हमें बड़ा चीपली नहीं लेना चाहिए। भगवान नाम, वैसे भगवान नाम से डील करना चाहिए वास्तव में जैसे कोई बहुत मूल्यवान वस्तु है। हाँ, जिस किसी मूल्यवान वस्तु से हम पैसे व्यवहार करते हैं वैसे हरि नाम से हमें व्यवहार करना चाहिए। तो वास्तव में ये हरि नाम है क्या? हरि नाम की एक व्याख्या आप करते हैं, किसी को हरि नाम के बारे में जानना है तो रूप गोस्वामी ने एक ही श्लोक में बोला है भगवान नाम के, हरि नाम क्या है उसके बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं, नाम चिंता मने कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। इस एक श्लोक में कृष्ण का जो नाम है उसका जो बहुत ही गहरा जो वर्णन है रूप गोस्वामी ने किया है कि ये नाम क्या है। तो वो कहते हैं नाम चिंता मणि। नाम कैसे है? ये चिंता मणि, एक चिंता मणि की होती है हमें। सुबह उठते तो किसका चिंता करते हैं? मनी। और दूसरा चिंता मनी है, हाँ, जिसको कहते हैं पारस पत्थर, हाँ, सोने, लोहे पर टच करो तो वो सोने में बदल जाता है। तो वो कहते हैं नाम इतना पावरफुल है कि चिंतामणि से भी श्रेष्ठ है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। दो बातें बताते हैं कि ये नाम क्या है, चेतन है, चैतन्य है, उसमें लाइफ है। इसलिए जब हम कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हैं तो थकते नहीं है, आनंद अनुभव करते हैं, कीर्तन करते हैं, उच्चारण करते हैं तो हमेशा आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य से भरा है, लाइफ है उसमें, रस विग्रह। और सारे रसों का क्या है? आगार है। हम इस संसार में परिवार का पालन पोषण करते हैं तो उससे भी हमें एक रस की अनुभूति होती है। उस रस को थोड़ा सा हृदय में अनुभव करते हैं, उसके लिए हम जीवन भर कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं, कितने कष्ट झेलते हैं, लेकिन अपने परिवार को क्या देखना चाहते हैं? सुखी, हंसते हुए देखना चाहते हैं। अब वो जब हंसते सारे घर वाले तो यहाँ कुछ होने लगता है, आनंद होता है, वो एक विशेष रस है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिद्ध में कहते हैं तो ये जो भगवान नाम है, हाँ, ये सारे रसों से भरा है। हाँ, क्योंकि कृष्ण क्या है? रस राज है। भगवान सारे रसों के आगार है, चैतन्य रस विग्रह। हाँ, और पूर्ण शुद्ध, ऐसे नहीं कि कुछ कमी है। भगवान नाम सबको शुद्ध करने वाला है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। भगवान का जो नाम है नित्य मुक्त है। और एक विशेष विशेष चीज कहते हैं रूप गोस्वामी, अभिन्नत्वात् नाम नामिना, कि भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है, हम भिन्न नहीं है, हाँ, एक है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी कहते हैं ये एक पहली चीज है हरि नाम की, कि ये क्या है? भगवान का नाम साक्षात कृष्ण है, जिसकी तुलना किसी और चीज से नहीं की जा सकती, उतना ही पावरफुल है जितने स्वयं कृष्ण है। रामायण से हम सुनते हैं, हाँ, बंदरों की जो उदाहरण है, सेतु बनाया जा रहा था लंका के लिए और फिर देखा कि अरे, हाँ, वो कैसे करें, तो वो सारे क्या करते हैं वानर सेना, एक स्टेशनरी शॉप में जाते हैं, बहुत बड़े बड़े परमानेंट मार्कर खरीदते हैं और सारे पत्थरों पर क्या लिखते हैं? राम का नाम लिखते हैं। राम का नाम लिखते ही जब जल में डालो तो पत्थर भी तैरने लगता है। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं कि इससे समझ सकते हैं कि भगवान का नाम भगवान से क्या है? अभिन्न है, उतना ही शक्ति संपन्न है। तो यदि पत्थर तैर सकता है तो हमारा पत्थर जैसा हृदय वाले हम जो जीव हैं, कोई संसार सागर से क्यों नहीं तैर सकते? लेकिन उसके लिए बंदरों जैसा कन्विक्शन चाहिए, बंदरों जैसा फेथ चाहिए, भगवान राम की सेवा करने के लिए उतनी तत्परता चाहिए। आप सोचो भगवान राम की विशेषता, हाँ, ऐसे लोगों की सहायता ली जिसको सब लोग ऐसे धुतकारते, बंदरों को कोई वैल्यू देता है नहीं, लेकिन भगवान किसी को भी सेवा में लगाकर महान बना सकते हैं। आज तक हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्यों? क्योंकि किसकी सेवा में लगे वो? राम जी की सेवा में, बंदर। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये मायने नहीं रखता कि आप कौन से जाति कुल आदि में पैदा हुए हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने सुंदर हो, कुरुप, वे सब सेकेंडरी हैं। सबसे पहले हैं आपके हृदय में भगवत सेवा करने के लिए कितनी श्रद्धा है, हाँ, कितनी तत्परता है, कितनी लालसा है, उसी पर आपका क्वालिफिकेशन निर्भर है, योग्यता भगवत सेवा की। हाँ, इसलिए भगवान का नाम भगवान से क्या है? अभिन्न है। हाँ, इस प्रकार से हमें भगवान नाम को बहुत सस्ता नहीं स्वीकारना चाहिए, सस्ता नहीं लेना चाहिए, बल्कि अनुभव करना चाहिए कि कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है। और दूसरी चीज भक्ति और ठाकुर कहते हैं अपने ग्रंथ हरिनाम चिंतामणि में कि कृष्ण के पास सबसे मूल्यवान चीज कोई है, कोई कहे कि भगवान आप तो भगवान हो, हर एक व्यक्ति के घर में कुछ ना कुछ मूल्यवान चीज है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है उसके लिए भी अपनी मूल्यवान चीज कुछ होती है, छुपा के रखेगा कहा ना कहा। हाँ, वैसे ही मूल्यवान चीज भगवान को यदि पूछे, भगवान आपके पास जो सबसे मूल्यवान चीज जो आप बिल्कुल अंदर रखते हो अपने तिजोरी में, वो क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नाम सम वस्तु नायेव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे, भगवान नाम से श्रेष्ठ धन भगवान के भंडार ग्रह में या तिजोरों में दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये जब ये पंच तत्व आ गए ना, पहली बार ये पंच तत्व ने पूरे दरवाजे खोल दिए उस भंडार ग्रह के, और भंडार ग्रह को लूट लिया। और जो मूल्यवान था क्या लेके आए, वो मूल्यवान चीज गोलोक एरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये पंच तत्व का काम लूटना है, खुद खाना और दूसरों को खिलाना, इसको कहते पंचतत्व। हाँ, वो क्या किया उन्होंने, कृष्ण के भंडार ग्रह से मूल्यवान नाम रूपी संपदा को लेके आए और सारे जगत को बांट दिया। हाँ, वृद्ध बच्चे स्त्रिया योग्य अयोग्य की कुछ नहीं देखा, और सबको ये भगवान नाम चैतन्य महाप्रभु और उनके संगियों ने प्रदान किया। इसलिए हमें भी अपने जीवन में कोई मूल्यवान वस्तु अपने पास रखनी है तो वो हरे नाम को रखने का प्रयास करना चाहिए। सनातन गोस्वामी वृंदावन गए हो, मदन मोहन मंदिर द्वादश आदित्य टीला, वहां सनातन गोस्वामी उस टीले के पास बैठकर हरे नाम ले रहे थे। और यहाँ किसी एक गांव में एक व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करने थी, पैसे नहीं थे, पत्नी पीछे लगी, कहा जाओ काशी चले जाओ, काशीनाथ जो महादेव है उनसे धन लेके आ जाओ, हम क्या करेंगे तब बेटी की शादी करेंगे, महादेव बड़े दयालु हैं। आशुतोष ये गए, महादेव कहते हैं मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो स्मशान में रहता हूँ, आप मेरे पास वस्त्र भी नहीं कि जिसमें पॉकेट हो, मेरे पास धन आदि नहीं है, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके पास धन ही धन है। कहते वृंदावन चले जाओ, द्वादश आदित्य टीला पर सनातन गोस्वामी है, उनके पास जाओ। तो ये गए शिव जी के शब्दों पर विश्वास, और गए और उनको प्रणाम किया, कहा महाराज आप तो बड़े ऊंचे टीले पर बैठकर नाम जप कर रहे हैं, मुझे थोड़ा धन दीजिए, बेटी का विवाह करना है। सनातन गोस्वामी ने कहा कि धन, हाँ ये जो है ना पारस पत्थर है ना, वहां देखो किसी को उधर कूड़े कचरे में ढेर लगा हुआ है और पारस पत्थर पड़ा है, वो उठा के ले जाना, घर में लोहा तो होगा ही, हाँ कुछ नहीं तो जाओ उसे टच करो और करो अपनी बेटी का विवाह। अभी ये तो आनंद में दिखा तो कूड़ा करकट हटाया, और अभी पारस पत्थर कितनी गंदगी में पड़े, और श्योर है कि है हम पूरा काले होने के लिए तैयार हैं उसको लेने के लिए, मोबाइल गिर जाए डस्टबिन में तो उल्टा होकर हम निकालने के लिए तैयार हैं। हाँ तो पारस पत्थर जो हजारों मोबाइल ला सकता है, तो इन्होंने उठाया और गए दौड़ते हुए पत्नी के पास। पत्नी का बुद्धि बहुत तेज था, महाबुद्धिमान थी ओसरी, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने पारस पत्थर को कूड़े धान में रखा है उसके पास इससे अच्छा धन हो सकता है, मूल्यवान चीज हो सकती है, जाओ वापस क्योंकि शादी हमें बड़ी जोर शोर से करनी है। ये गए, पत्नी की आज्ञा का पालन किया और गए सनातन गोस्वामी के पास, कहा कि मुझे इससे मूल्यवान चाहिए। वास्तव में पत्नी की बहुत कृपा हो गई उसके ऊपर, है कि नहीं? हाँ, तो जब सनातन गोस्वामी के पास गए और उनको कहा कि मुझे मूल्यवान वस्तु दीजिए, सनातन गोस्वामी ने कहा एक नाव दो नाव पर पाव रखना अलाउड नहीं है, पार होना है तो एक ही नाव पर खड़े हो जाओ। अभी ये महाशय ये साथ में पारस पत्थर और कुछ भी मिल जाए सनातन गोस्वामी से, वो भी लेने के लिए तत्पर है, सनातन गोस्वामी ने कहा उस समय नदी पूरा मदन मोहन के वहां से बहते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा जब धाम में पाप आदि होंगे तो क्या होगा, ये जो यमुना है वो दूर दूर चली जाएगी और नष्ट होगी कालांतर में। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे वृंदावन में भी अभी सारे पाप कर्म करते लोग दिल्ली वाले ही जाते हैं। तो ऐसे जब सनातन को समय का देखो ये नदी है पारस पत्थर को वहां फेंक दो और क्या करो तब मैं देने के लिए तैयार हूं। तो फिर पारस पत्थर को उन्होंने फेंका, सनातन को समय ने कहा अभी दो हाथ ऊपर करो और जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वास्तव में धन है, ये वास्तव में असली संपदा है जो इन आचार्यों ने अपने जीवन में धारण की थी। इसलिए शास्त्र कहते हैं हाँ जैसे उदाहरण कोला बेचा श्रीधर का दिया जाता है जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन महाप्रभु के सबसे प्रिय थे। क्या था उनके पास, कृष्ण नाम सदैव उनकी जीवा में नाचता था। हाँ जीवन की परम सिद्धि जीवन की सफलता क्या है, अंते नारायणः स्मृति, अंत समय में नारायण का स्मरण होना। और उसके लिए क्या करना होगा, भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय में कहते हैं कि भगवान नाम का जो स्मरण है वो निरंतर करना। तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना यो मां स्मरति नित्यशः। 8वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि निरंतर स्मरण का वर्णन करते हुए है, भगवान कहते हैं यो मां स्मरति नित्यशः जो मेरा निरंतर स्मरण करता है तस्याहं सुलभ पार्थ उस व्यक्ति के लिए मैं क्या हूं, सुलभ हूं। हाँ तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि भगवान नाम को हमें अपना असली धन बनाना चाहिए और भगवान नाम के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करना चाहिए। और जिन जिन महान महान आचार्यों के जीवन आचार्यों का जीवन भगवान नाम के प्रति आसक्त था या भगवान नाम प्रेमी थे उनके बारे में पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। हाँ इसे महान महान भक्त जैसे सनातन गोस्वामी और कौन थे, रामाचार्य हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को देखो तो सारे नाम प्रेमी थे, भगवान नाम से उनका अनुराग था। और वास्तव में इस आंदोलन का नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। और वैसे लोग कहते हैं हरे कृष्ण आंदोलन है, ये हरे कृष्ण वाले हैं। तो आप किसी योगा सोसाइटी में होते तो आपसे ये अपेक्षा की जाती कि आप योग करने में क्या होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए। जब हरे कृष्ण सोसाइटी में हो तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपकी दक्षता किस चीज में होनी चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से दक्षता आएगी जब हम भक्तों के संग में भगवान नाम का उच्चारण करेंगे श्रद्धा के साथ। हाँ श्रद्धा जैसे मैंने शुरुआत में कही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण मेरे जीवन में दो ही चीजें चाहिए, साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहे, संसार जिने त्यार कौन वस्तु नाए। दो ही चीजें साधुओं के संग में भगवान नाम में लिया करो, ये दो चीजें मेरे जीवन में है तो इस संसार को जीतना मेरे लिए क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे जगदानंद पंडित, उन्होंने ये बोला है। हम ऐसे ऐसे भक्त नाम का इतना सामर्थ्य है। चैतन्य महाप्रभु के भक्त एक बार कीर्तन कर रहे थे एक स्थान में किसी के घर में और पड़ोस में मुस्लिम का घर था, वो जोर जोर से जब कीर्तन हो रहा था तो इनको दिक्कत हो रही थी तो मरा हुआ सियार क्या किया उस कीर्तन में फेंक दिया इन लोगों ने। और वो मरा हुआ सियार क्या हो जाता है कीर्तन में, जीवित होकर नाचने लगता है और वो भी जोर जोर से चिल्लाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, शास्त्र में एक और सेंटेंस आता है जिसमें कहा गया है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि ना संशया, ये सुना है शब्द, जपात सिद्धि। शास्त्र कहते हैं कि जप से क्या मिलेगी आपको? सिद्धि। हाँ, वो सिद्धि आपको प्राप्त करनी है तो क्या करो, नाम को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ, नाम को सबसे करीब, नाम और मेरे बीच में और कोई नहीं चाहिए। कभी कभी लगता नहीं पति पत्नी के बीच में तीसरा कौन आ गया लड़ाई करने के लिए? हाँ, वैसे ही नाम के बीच में और मेरे बीच में और नहीं। हाँ, इतना प्रगाढ़ प्रेम की जो भावना है हरि नाम के प्रति होनी चाहिए। अरे, विशेष दिन चल रहे हैं वर्ल्ड होली नेम वीक, जिसके बारे में हमें हरि नाम के बारे में पढ़ते रहो, सुनते रहो, चर्चा करते रहो और दूसरों को बताते रहो, जिससे नाम के प्रति आपका श्रद्धा, निष्ठा और आसक्ति बढ़ेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे।